हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा जय नरनिताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 1 श्लोक संख्या 33। ततः ऊर्ध्वं वनं तत् वै पुरुषाः वर्जयन्ति हि सा च अनुचर संयुक्ता विचचारा वनात् वनम् तत ऊर्ध्वं वनं तत्वै तत ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि पुरुषा वर्जयन्ति हि साचानुचर संयुक्त साचानुचरं संयुक्त विचचार वनाद्वनम् विचचारावनाद्वनम् तत ऊर्ध्वं वनं तद्वै तत ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चाचुचारसंयुक्ता विचचारावनाद्वनम् पुरुषावर्जयन्तिः संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् पुरुषावर्जयन्तिः वनम् तद्वै पुंसावर्जयन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् तौर्धं वनं तद्वै विश्वावदन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् माताजि ऊर्ध्वं वनं गत्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् तदूर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् अपूर्वं वनं गत्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् अतौर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चानुचरं संयुक्ता विचचारावनाद्वनम् तत ऊर्ध्वं वनं गत्वै पुरुषावर्जयन्तिः सा चारुचरसंयुक्ता विचचारावनाद्वनम् तत ऊर्ध्वं उस समय के बाद वनम जंगल में तत उस वै विशेष रूप में पुरुषाः पुरुषगण वर्जयन्ति ही नहीं प्रवेश करते ही निस्संदेह सा स्त्री रूप में सुद्युम्न चा भी अनुचर संयुक्ता अपने साथियों के साथ विचारा घूमने गया वनात वनम एक जंगल से दूसरे में अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद उस काल में कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा किंतु अब स्त्री रूप में परिणित होकर राजा सुद्युम्न अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। यह शरीर स्त्री की भांति है या यह शरीर वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुद्युम्न तथा उनके साथी नर पुरुष थे जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा नर वस्त्र से ढकी थी किंतु अब वे स्त्रियां हो गई जिसका अर्थ है कि उसका वस्त्र बदला था किंतु आत्मा वहीं रही। कहा जा सकता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणित किया जा सकता है किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता। शरीर तो इसी जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा का और एक शरीर के दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतरण का ज्ञान है वह वस्त्र रूपी शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। पंडिताः समदर्शिना ऐसे व्यक्ति परमात्मा के अंश रूपी आत्मा का दर्शन करता है इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you.
वैसे आज 33वां श्लोक है, कल 18वां श्लोक हुआ था और 19 से लेके 33वां श्लोक तक कोई तात्पर्य नहीं है, एक कथा का वर्णन है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। 19वां श्लोक किस प्रकार है, मनु के वचनों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली प्रपितामह वशिष्ठ होता की त्रुटि को समझ गया, अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले। अभी आप सबको एक कथा मालूम है कि मनु उनको चाहिए था एक पुत्र, लेकिन उनको पुत्री हो गई, तो ये होता का टूटी था ये समझ गए। ऐसे होता का टूटी कितना हद तक है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था होता को मुझे पुत्री चाहिए, तो ये गलती पत्नी का था, लेकिन वो सोचने लगे सब लोग ये होता का तूती हैं, उनके अंदर कुछ कार्य करने में या कुछ क्रिया में कुछ गलत हो गया होगा, मंत्र के उच्चारण में कुछ गलत हो गया होगा। फिर ये मनु पहला खुश हो गए थे, लेकिन वो जो सुख था उनको पुत्री प्राप्ति का वो इतना लंबा समय नहीं था, उनको पुत्र चाहिए था। वो जाके वशिष्ठ से उन्होंने पूछा मुझे एक पुत्र चाहिए किसी भी तरीके से। तब वशिष्ठ ने कहा आगे क्या कहते हैं, लक्ष्य में यह त्रुटि तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण हुई है, फिर भी मैं उनके पराक्रम में अपनी पराक्रम से तुम्हें अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। तो वशिष्ठ बड़े शक्तिशाली है, तुमने कहा कि अपने मनु को पौत्र को कि आप चिंता मत करो, मैं ऐसा एक शक्ति मेरी शक्ति के द्वारा आपको मैं एक पुत्र प्रदान करूंगा। आगे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणित करने के लिए प्रार्थना की। तो वशिष्ठ ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, हे भगवान, ये जो इला है ये पुत्री है मनु के, इनको आप पुत्र बना दीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से। परम नियंता भगवान ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा वरदान दिया। इस तरह हाला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष में इला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष के रूप में परिणित हो गई। अभी भगवान विष्णु के प्रार्थना किया, जैसे प्रार्थना किया तो इला जो है वो पुरुष के रूप में परिणित हो गई। आगे, हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहना था और धनुष भाण से सुशोभित था, वह अत्यंत सुंदर था, वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए जंगल की उत्तरी भाग में पहुंच गया। जो ये सुदुम्न्य नामक एक पुत्र अभी हो गया, तो इला सुदुम्न्य बन गया या कुछ क्या बोलेंगे पता नहीं इसका, इला सुदुम्न्य बन गई और वो बहुत सुंदर था, सिंधु प्रदेश से लाए घोड़े के ऊपर बैठ के वो चल रहा था, वो शिकार करते हुए जा रहा था। तो क्या हुआ, तो उसका वर्णन किया गया है, वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए वो जंगल के उत्तरी भाग में पहुंचा। जैसे जंगल के उत्तरी भाग में पहुंचा तो क्या हुआ, वहां मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां शिवजी सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सुधन्य उसी वन में प्रविष्ट हुआ। तो मेरु पर्वत के उत्तरी भाग में एक सुकुमार नामक वन है, उधर प्रवेश किया। वो वन में सदैव शिवजी उमा के साथ निवास करते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुधन्य उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, क्यों ही उसे देखा कि उसने देखा कि वह स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणित हो गया। जैसे जंगल में प्रवेश किया तो सुधन्य ने देखा कि वह स्त्री में परिणित हो गया, उसका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। पहले इलाका स्त्री था, फिर वापस उस दिन में वापस स्त्री बन गया। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ तो वो स्त्री बन गया। जब उसने जब उनके साथियों ने भी अपने स्वरूप एवं अपने लिंग को विपर्यस्त देखा तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो जैसे वो लोगों का पूरा शरीर, सबको उनके साथियों में सबका शरीर बदली हो गया, बदली हो गया, सबको एक दूसरे को देखने लगे, नहीं क्या हो गया। श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज ने वापस प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? महाराजा परीक्षित ने कहा, हे परम शक्तिशाली ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिवान क्यों था और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया? कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। जैसे परीक्षित महाराज ने ये प्रसंग सुना, तुरंत उनको आश्चर्यजनक लगा, अरे इतना शक्तिशाली है कि उसके बारे में सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं, आप बताइए। आगे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले बड़े बड़े साधु पुरुष उस जंगल में शिवजी का दर्शन करने गए। उन सबके तेज से सारी दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया था। एक बार सारे ऋषि मुनिगण बड़े तपस्वी थे, वो शिव जी का दर्शन करने के लिए उस जंगल में पहुंचे। जैसे जंगल में पहुंचे, जंगल में कोई अंधकार नहीं था, उनकी शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा था कि अंधकार पूरा दूर हो गया। जब देवी अंबिका ने इस साधु पुरुषों को देखा तो वो अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपनी पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। और उस समय उमा और शिवजी ये रमण कर रहे थे। तो जैसे ही ये साधु पहुंचे, ये सब मुनिगण पहुंचे, तो तुरंत पार्वती जी ने अपने आप को ढक लिया। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष तुरंत ही वहां जाने से रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किए। और शिव पार्वती रमण कर रहे थे, देख के साधु पुरुष ने क्या किया, सब लोग वो नर नारायण की ओर बद्री पहुंच गए। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, इस स्थान में प्रवेश करते ही पुरुष तुरंत स्त्री बन जाएंगे। शिव जी का आशीर्वाद था कि इस व्यक्ति इस स्थान में कोई भी आता है तो तुरंत वो स्त्री बन जाएंगे। उस काल में कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा, किंतु अब स्त्री रूप में परिणित होकर राजा सुधन्य अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरा जंगल में घूमने लगा। तभी ये प्रसंग इस प्रकार है कि शिवजी का ऐसा विचार था, क्या उनको पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ने कहा कि इस जंगल में कोई भी आएगा, वो पुरुष आएगा तो तुरंत स्त्री के रूप में परिणित होगा। तो ये बड़ा सुंदर घटना है। शास्त्र में ऐसे ऐसे लीलाएं हैं जो हमारी कल्पना से परे है। अगर इन चीज़ों को अगर बौद्धिक बुद्धि से देखेंगे तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये शरीर का बदली होना केवल किसी के शाप की वजह से या किसी की इच्छा की वजह से आप इधर प्रवेश करोगे तो आपका शरीर इस प्रकार बदली हो जाएगा, ये इस प्रकार की जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, हम देखते हैं कि आजकल के मनुष्य कल्पना में इस प्रकार की चीजें हमको दिखाई पड़ता है। कोई भी चीज आजकल हमको कुछ अद्भुत करके दिखाते हैं, कुछ सिनेमा दिखाते हैं। जैसे आप देखे होंगे बचपन में, मैं देखता था टीवी में, तो स्टार ट्रेक, तो उसमें से कहीं दूसरे प्लैनेट में तुरंत चले जा सकता है। एक ऐसा एक दरवाज़ा रहता है, वो दरवाजे जाओगे तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाओगे। ये जो मनुष्य कल्पना है, लेकिन ये कल्पना आई कहाँ से? सच में कहीं इस प्रकार की घटना हुई रहेगी, इसलिए कल्पना मनुष्य में आ रही है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जो मनुष्य की कल्पना में वही चीजें आ सकती हैं जो दुनिया में कहीं ना कहीं है, तभी तो ये कल्पना आ सकती है। तो आजकल हम पिक्चरों में कभी देखते हैं, स्टार ट्रेक करके एक मूवी था, उसमें भी ऐसे ही था, एक जगह जाते ही वो सब लोग स्त्रियां बन जाते हैं। तो उसको बोलते हैं साइंस फिक्शन, दुनिया में आजकल लोग कहते हैं इट्स फिक्शन, लेकिन ये फिक्शन नहीं है। ये फिक्शन इसलिए है, नाम दिया जाता है कि ये मिथ्या करके क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी के जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अभी का जो ज्ञान, उसके हिसाब से असंभव है। उस चीज को लोग सोचते हैं कि फिक्शन है, ये काल्पनिक है, इसमें कोई शक्ति नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वेदों के समय में ऐसा लोगों के पास विज्ञान था, ऐसा शक्ति थी कि इस प्रकार के अद्भुत कार्य कर सकते थे कि यज्ञ में यज्ञ से व्यक्ति को, पुरुष को उत्पन्न करा सकते थे और पुरुष को वापस बलि कर सकते थे, और एक जगह जाते ही उनका तुरंत रूप परिवर्तन हो सकता था। ये सब शास्त्रों के लिए या वैदिक काल के अनुसार जो जिनका शास्त्र में श्रद्धा है उनके लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं है। अद्भुत कार्य है कि हो सकता है, वशिष्ठ कर सकते हैं, शिवजी कर सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। लेकिन आजकल के मनुष्यों के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है, मंत्र विज्ञान इस प्रकार का नहीं है। अभी आजकल हमको क्या दिखाई पड़ता है? यंत्र विज्ञान दिखाई पड़ता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, ये यंत्र विज्ञान के द्वारा वो मंत्र के द्वारा प्राप्त किया गया रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे योगीगण लगीमा हल्का हो सकते थे, हल्का होकर हवा में उड़ सकते थे, अपने आप ऊपर उड़ा सकते थे। अभी वही कार्य क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, विमान बना के करना चाहते हैं। तो हर जगह जहां चाहे वो आप प्रवेश कर सकते हैं। वो आजकल के भाई आधुनिक विज्ञान लोग लेसर के द्वारा, कुछ और के द्वारा वो करते हैं, यानी कहीं दूर कुछ हो रहा है उस चीज को आप इधर देखना चाहते हैं। जैसे संजय धृतराष्ट्र को घर में बैठ के, यानी महल में बैठ के महाभारत के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है सब कुछ बता पा रहा था, क्योंकि उनके हृदय में वो सब प्रकाशित हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग वही चीज को क्या करते हैं, टीवी के द्वारा देखते हैं। तो दो प्रकार का विज्ञान है, एक है यंत्र विज्ञान, दूसरा है मंत्र विज्ञान। तो यंत्र विज्ञान निम्न प्रकार के जीव, कलयुग के जीवों के लिए है, लेकिन मंत्र विज्ञान जो है वो उच्च स्तर के लोगों के लिए है। अभी वो मंत्र सब है, जैसे वेदों में एक मंत्र है जिसको उच्चारण करने से अग्नि अपने आप प्रकट हो जाता है। पहले की जो यज्ञ करने वाले हैं वो माचस चला के यज्ञ को चलाते नहीं थे, वो केवल मंत्र शक्ति के द्वारा यज्ञ को प्रकाशित करते थे। लेकिन अभी वो मंत्र है लेकिन फिर भी उसको उच्चारण करने के द्वारा वो यज्ञ अग्नि प्रकट नहीं होता, उच्चारण करते हैं और माचिस जलाना पड़ता है। क्यों, क्या तकलीफ है? हमने उसके बारे में कल के श्लोक में चर्चा किया, वो है इंद्रियों का नियंत्रण। जब तक इंद्रिय नियंत्रण नहीं होता है वो मंत्र उच्चारण करने के द्वारा उस मंत्र का जो प्रभाव नहीं होता है। तो आजकल वैसे प्रकार के मंत्र होने पर भी उसको उच्चारण करने के द्वारा ऐसा परिणाम नहीं होता है। पहले के हम लोग देते हैं शास्त्रों में पुराणों में इसको वर्णन है, कोई ऋषि आके बोलता है तुम बिल्ली बन जाओ तो बिल्ली बन सकता है, तुम स्त्री बन जाओ तो स्त्री बन जाएगा। उनके पास ऐसी शक्ति थी, वो मंत्र है, मंत्र अभी भी मान लो कि वेदों से ढूंढ के उसको उच्चारण कर भी दिया तो वो बोलने के द्वारा उसको उसका प्रभाव नहीं होता है। क्यों? उसका मूल कारण यह है इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है। जितना हमारे इंद्रियों नियंत्रण में इंद्रिया नियंत्रण में रहता है उतना हमारे अंदर वाक सिद्धि आती है। ये वाक सिद्धि ऐसी चीज है बोलने से वो हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, इसको वाक सिद्धि कहा जाता है। एक वाक सिद्धि किसके ऊपर आधारित है? हमारी इंद्रिय नियंत्रण के ऊपर आधारित है। पहले हम इस बात को सुन रहे थे कुछ दिन पहले, प्रभु जी रमाकांत बता रहे थे कि श्रृंगी ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ब्राह्मणों के मन में कलमश जो है कलयुग का शुरुआत हुआ श्रृंगी से। तो ये कलयुग का शुरुआत जिस श्रृंगी से हुआ उनके पास भी इतना शक्ति था कि परीक्षित जैसे महाराजा महान भक्त को शाप दे सकता था कि 7 दिन में तक्षक आके उनको काटेगा। तो ये जो वाक सिद्धि है ये साधारण चीज नहीं है। व्यास देवदी विधान सूत्र ने इस बात को कहते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत होता है जिसका इंद्रिय नियंत्रण में रहता है उनके पास ये वाक सिद्धि एक आती है और दूसरा है वो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, आगे भविष्य में क्या होने वाला उनको मालूम पड़ जाता है। ये दो चीजें हैं स्वाभाविक तरीके से उनको हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना जिसका उन्नत है कम से कम उतना इंद्रिया जिनका नियंत्रण में है ये दो चीजें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अद्भुत घटना हम देखते हैं, वशिष्ठ ने प्रार्थना किया भगवान से कि ये पुत्री को पुत्र कर दो, तो भगवान की कृपा से उन्होंने पुत्री को पुत्र करा दिया और शिव जी ने खाली इतना बोल दिया कि जो भी व्यक्ति इधर आएगा वो निश्चित रूप में क्या हो जाएगा, वो स्त्री बन जाएगा। तो ये इस प्रकार का परिणाम जो है अलग अलग शास्त्रों में हमको प्राप्त होता है। एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में थोड़ा वर्णन करना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट इसके बारे में कहा था जिसका नाम है स्क्रॉडिंगर, तो उन्हें कहा कि वेदों में इस प्रकार की जो बातें लिखी गई है ये विज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो आजकल का जो विज्ञान है उसके ऊपर आधारित होते हुए ये संभव है करके मैं स्थापना कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इस जगत का वस्तु है ये अंततः मूलतः शब्द है। जैसे शास्त्रों में भी हमको सुनने को मिलता है वेद के अनुसार हमारा सृष्टि जो है शब्द, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ साउंड, प्रभुपाद जी बार बार इस बात को कहते हैं। वे बाइबल में कहा शुरुआत में शब्द है, उसके बाद जो है हर चीज प्रकट हुआ है, शब्द से ही सब कुछ प्रकट हुआ है और शब्द में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। तब उन्होंने कहा कोई वस्तु लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई उन्होंने कहा आइस लीजिए, वो सॉलिड है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे से वो लिक्विड हो जाएगा, वो एक प्रवाहित होने वाला जल के रूप में परिणित होगा। उसको और गर्म कीजिए तो क्या होगा, वो स्टीम बन जाता है, स्टीम यानी हवा बन जाता है, और उसको और गर्म कीजिए वो क्या बन जाता है, अंततः वो आकाश बन जाता है। आकाश जो है वो किससे बना हुआ है, शब्द से बना हुआ है। तो ये आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक लोग इसको पहचाने, तुमने स्पष्ट रूप में कहा कि हमारे पास ये शब्द विज्ञान नहीं होने की वजह से इस बात को नहीं समझ रहे। लेकिन उन्हें साइंटिफिकली उन्हें प्रूव किया जो वेदों में इस प्रकार को रूपों को परिणत करने की जो बात है मंत्र विज्ञान के द्वारा ये सत्य है। इसमें कोई दोष नहीं है, इसको देख के अवहेलना नहीं करना चाहिए, इसको देख के माइथोलॉजी नहीं करना चाहिए। तो उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक ने प्रूव किया, उन्हें कहा कि ये जितने भी स्थूल चीजें दिखाई पड़ रहा है तो अंततः मूलतः वो शब्द है। तो उन्हें कहा ये दिस ऑल मेड अप ऑफ वेव फंक्शंस। जैसे हम जो भी फिजिक्स पढ़े होंगे आपको मालूम है कि ये जो साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स का अर्थ है कि उसको क्या बोले, लहर, तरंगे, हवा में बहने वाले तरंगे, वो तरंगे कुछ और नहीं है, आकाश का सूचक है। तो उन्हें कहा कि जब हर चीज का मूल रूप शब्द है, अगर कोई मंत्र उच्चारण करके उस मंत्र की शक्ति के द्वारा इसकी जो मूलभूत जो शब्द रूप है उसको परिणित कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, इसको उसका स्वरूप भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई कोई बिल्ली है तो उसको कुत्ता बनाना है, तो बिल्ली जो है शरीर है, स्थूल रूप है उसका, शरीर है, और उसका जो मूल कहां है, शब्द में है। अगर बिल्ली का जो शरीर का मूल शब्द है, कुछ शब्दों का उच्चारण करके ये शब्द का जो वेव्स फंक्शन है उसको चेंज कर दो तो अंततः कुछ और हो जाएगा। तो ने बात को प्रूव किया। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो प्रभुपाद लिखते हैं कि लिंग को परिणाम करने की जो क्रिया है, ये विचार है, ये नया चीज नहीं है, पहले पुराना जमाने में भी हुआ था, अनेकों समय हुआ है, पुराणों में भी हुआ है, अभी अभी इस प्रकार करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंत्र विज्ञान का अभाव के वजह से अभी वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके बदली करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो करने के लिए प्रयास करेंगे लेकिन नहीं होता, वो व्यक्ति जो है मर जाता है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे केसेस है, इस प्रकार की प्रयास में करते करते ये कहा सक्सेसफुल हो गए, लेकिन सब लोग, चार पांच लोग तो उदाहरण है कि मर गए, छह सात महीने में मर गए। किसी को स्त्री बनना था तो वो बहुत ऑपरेशन कराया, डॉक्टर लोग बहुत ये किया, उनका सब चेंज किया, सब करने के बाद में छह महीने के बाद मर गया। तो ये जो आधुनिक विज्ञान है वो यंत्र विज्ञान के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो प्राप्त किया गया सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे, इसलिए वो सब विफल है। तो ये यंत्र विज्ञान की कमी है। तो हम इस बातों को थोड़ा सा सोचा मन में बताओ, लेकिन अंततः प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार का परिणाम, शरीर का परिणाम होना, या एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करना, या इस जन्म में प्राप्त करना हो या दूसरे जन्म में प्राप्त करना हो, शरीर त्याग करके दूसरा शरीर को प्राप्त करना हो, अंततः ये शरीर का जो अंतर है, देहांतर है, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मोहयति, धीर व्यक्ति जो है वो मोहित नहीं होता। अभी देखिए, अगर मान लीजिए इधर हमारे समूह में को जो पुरुष शरीर में है, अगर तुरंत स्त्री बन जाए हमारा क्या हालत हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। लेकिन सुदम जो है ग्रहण करने लगा उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सुदम को मालूम था कि हम कहां प्रवेश किए, तो उनको जैसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ वो चल रहे थे, लेकिन बाकी उनके अनुचर थे वो सब लोग परेशान हो विस्तृत हो रहे, देखते हैं क्या हो गया हमको। तो धीरस तत्र न मोह्यति, ऐसे हम अन्य शास्त्र में प्राप्त करते हैं, जैसे भागवतम में परीक्षित महाराज का ये पहला प्रश्न था दसवां स्कंद का, कि बलराम जी के विषय में, कि बलराम जी का ऐसे कैसे हो गया, गर्भांतर हो गया, कुतो देहांतरम विना, दूसरी मां के घर में कैसे पहुंच गए, ये भी आश्चर्य वाली बात है। लेकिन वो दिव्य चीज है, वो केवल भगवान के साथ संबंध है, लेकिन इसमें उसमें अंतर है। बलराम जी एक ही शरीर में मैंने क्या किया, गर्भांतर किया, लेकिन इधर क्या हुआ, एक ही जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त किया, देहांतर हो गया। उधर क्या हुआ था, एक ही शरीर था, गर्भांतर हुआ था, लेकिन उन दोनों में अंतर है। ये एक ही शरीर में गर्भांतर करना वो जो है एक बलराम जी के साथ संबंध है, क्योंकि शरीर भगवान बलराम जी का वो शाश्वत है। इधर क्या हुआ, आत्मा शाश्वत है, ये शरीर जो है वो हर समय क्षीण होता जाता है। साइंटिस्ट लोग के अनुसार, आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार भी, हमारा शरीर जो है वो सेल्स, जो कण होता है जिससे, जिन कणों से हमारा शरीर बना है, वो भी हर क्षण मरता जाता है, नए नए उत्पन्न होता है। कैंसर किसको कहते हैं? कैंसर उसी चीज को कहते हैं जब आपके पुराने जो सेल्स से नहीं मरते, उसको कैंसर कहा जाता है। हाँ, तो ये जो कैंसर है वो किसको कहा जाता है? पुराने सेल्स नहीं मरने की वजह से कैंसर है। इसका अर्थ क्या है? हर क्षण अनेकों अनेकों सेल्स मरते रहते हैं, नए नए सेल्स उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार ये है कि 7 साल में पूरा शरीर का सेल्स पूरा परिणित हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी 7 साल में अगर हम शरीर होते हैं, 7 साल में पूरा अलग हो जाते हैं हम लोग? नहीं। तो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के श्लोकों के तात्पर्य में ये बार बार समझाते हैं, अस्तित्व में ये परिणाम जो है नित्य प्रलय होता गया है, होता रहता है शरीर का। इट इज ऑलवेज बीइंग डिस्ट्रॉयड। मैटर, ये जो जड़ वस्तु का स्वभाव है, जड़ वस्तु का स्वभाव क्या है? हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है, परिणित होता रहता है, चेंज होता रहता है। वो मरता रहता है, नया चीज जगत होता है, मरता रहता है, नया चीज, नया सेल्स आता रहता है। तो इसको देख के व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। इस बात को और स्पष्ट रूप में कहने के लिए भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो सत्वदर्शी। तत्वदर्शी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ये दोनों प्रकार के स्वभाव को जानता है, प्रकृति जड़ वस्तु का या भौतिक वस्तु का स्वभाव को भी जानता है, और आत्मा जो चेतन वस्तु है उसको स्वभाव को जानता है, उसको तत्वदर्शी भी कहा गया है। उभयोरपि दृष्टो, दोनों को जानता है। शरीर जो है वो नाशवान है, और साथ साथ में ये आत्मा है उसके अंदर, वो भी जो है वो जो है वो शाश्वत है। इसी तत्वदर्शी के बारे में भगवीता में भगवान आगे कहते हैं 4th अध्याय में कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षते ज्ञान ज्ञाने तत्वदर्शन। तो ये तत्व को हमको मालूम करना चाहिए। जब तक ये तत्व ना मालूम नहीं रहता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तब तक अस्तित्व में कोई भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। ये तत्व के रूप में जानने का अर्थ क्या है? ये अनुभव करना, ये शरीर और शरीर के संबंधित हर चीज अनित्य है, और ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दिस गॉट नथिंग टू विद इसे तत्व महाबाहो गुणकर्म विभाग हो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये सारा जगत किससे बना हुआ है? गुणों का परिवर्तन मात्र है, गुणों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आई एम बियॉन्ड दिस थिंग इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते करते इसमें उससे कोई विचलित नहीं होता है व्यक्ति। ये गुणों का संस्पर्क है, कुछ गुणों का मिश्रण, कुछ गुणों के मिश्रण के साथ संस्पर्क कर रहा है, वो भी किसके द्वारा? गुणों के प्रभाव की वजह से। तो इस जगत में केवल गुणों का ही संस्पर्श है, और गुणों का प्रभाव की वजह से संस्पर्श हो रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना? ये विचार जो है न सज्जते। तो जैसे ये मान लीजिए अगर किसी को इधर ऐसा प्राप्त हो गया, स्त्री को तुरंत पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया, दुखी होने की जरूरत नहीं। स्त्री को पुरुष का शरीर, पुरुष को स्त्री का शरीर को छोड़ दीजिए, हमेशा व्यक्ति को बहुत बड़ा ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है। जैसे थोड़ा सा बाल खाड़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था आता है, तुरंत सब लोग युवा युवक बनना चाहते हैं, उसके लिए कितना प्रयास करते हैं। ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ऐसा कहा गया है कि जो चीज आपको 100 रुपए में बिकता है कॉस्मेटिक, कोई भी आपको युवक जैसे दिखने के लिए, युवती जैसे दिखने के लिए जो 100 रुपए बिकता है, वो 80 रुपए जो है वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ क्या है? आपको बताया जाता है, देखो अगर आप ये यूज करोगे आप बुढ़े नहीं होगे, अगर हो भी गया है तो आप दिखोगे जवान जैसे। अभी केवल जवान दिखने के लिए लोग कितना प्रयास करते, कितना हंगामा करते, क्या क्या नहीं करते, सारा प्रयास। खास करके जैसे कोई व्यक्ति का 25 साल 30 साल हो जाता है या 40 साल के करीब आता है, वो बहुत उसका चिंता रहता है, मैं बुढ़ा हो रहा हूं लेकिन नहीं दिखना चाहता हूं, मैं जवान दिखना चाहता हूं, मैं युवती दिखना चाहती हूं। ये समाज की विचित्र बात है। हर बच्चा जो है सोचता है कि मैं योग बनना चाहता हूं, और हर वृद्ध व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं योग बनना चाहता हूं। ये हमेशा ये नव यौवनम चय कृष्ण का स्वभाव है, लेकिन ये मनुष्य प्राप्त करता है, ये शरीर को युवावस्था में बनाकर रखने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो कभी संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये सारे प्रयास को त्याग करके हमारे आत्मा का स्वाभाविक शाश्वत तत्व, उसको समझने से सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये आजकल का जो समस्या है, यही है। यह शरीर का परिवर्तन के द्वारा सब लोग विचलित है, यह शरीर के संबंधित परिवर्तन के द्वारा सब लोग विचलित है। इसलिए मैनेजमेंट क्लास में, मैनेजमेंट कॉलेज में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है चेंज मैनेजमेंट। जब कोई चीज परिवर्तन होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके ऊपर 2-3 चैप्टर है। एक बार मैं बड़ौदा में था, अलग अलग कॉलेज में प्रवचन दे रहा था, तो उस समय मैनेजमेंट कॉलेज से मुझे इनविटेशन आया, आपको अगले दिन सुबह जो है आपको कॉलेज में प्रवचन देना है, टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट। मुझे रात को 8 बजे मालूम पड़ा और सुबह मेरा ट्रेन था वापस बॉम्बे आने के लिए। तो लोगों ने कहा नहीं कि आपको हम दूसरा ट्रेन कर देंगे, दोपहर का ट्रेन कर देंगे, आप जो है इसके ऊपर क्लास दीजिए। मुझे क्या मालूम चेंज मैनेजमेंट होता क्या, मैनेजमेंट तो पढ़ा नहीं। तब मैंने उनसे एक लड़के से मंगाया, आप क्या पढ़ते हो, आपके टेक्स्ट बुक लेके आओ। मैंने टेक्स्ट बुक लेके पढ़ा तो उधर ऐसा लिखा था कि इस जगत में हर चीज़ परिवर्तनशील है, उनका मैनेजमेंट बुक में लिखा हुआ है। सही बात है, भगवद गीता में जो कहा गया यही बात कह रहे हैं। और जब परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, कोई नया आपके बॉस आता है या नए स्टाफ आता है या आपका कंपनी का जगह शिफ्ट होता है, तो आप उसको कैसे, आप उसको संभालोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, पूरा उसके ऊपर था 3-4 चैप्टर। मैंने उसको पूरा पढ़ा, मतलब कि यही पढ़ा हुआ चीज़ को कैसे पढ़ाए और उसके ऊपर क्या लेक्चर दूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात भर कुछ सोच रहा था, समझ में नहीं आया। इतना हद तक कि क्लास से जाने के बाद मुझे मालूम पड़ रहा था क्या बोलूँ। तो उधर बैठा क्लास में, अभी बस मंगलाचरण चल रहा है, अभी तक मालूम नहीं क्या बोलने वाला, एक घंटा। तब तुरंत भगवान ने प्रेरणा दिया, तुम इस श्लोक के ऊपर प्रवचन दो, ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता। तो उसके ऊपर प्रवचन दिया कि सबसे पहला इस बात को कहा, द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। इस जगत में एक ही शाश्वत चीज है, वो क्या है, परिवर्तनशील होना ही एकमात्र शाश्वत तत्व है। तो शुरुआत में कैसे बताया कैसे परिवर्तन होता है शरीर का, परिवर्तन कैसे होता है इस जगत का, तो सब लोग एकदम आश्चर्य होता है, ये सब चीज़ें भगवद्गीता में है क्या। मैंने कहा कि आई भगवद्गीता का श्लोक उच्चारण कीजिए, सब लोग जैसे भागवतम क्लास में होता है ना सतो विद्यते भाव, सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट बोल रहे ना सतो विद्यते भाव न भाव। तो अंततः यही कहा कि अगर आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, आपके माहौल परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तन के साथ आपको विचलित नहीं होना है। आपके साथ में कोई है भी बाद में चला जाता है, कुछ ऐसा आपके पास पैसा आया, कुछ समय के बाद पैसा खर्चा हो खत्म हो गया, ये परिवर्तन है। अभी आपका हाथ पैर है, परिवर्तन क्या है, वो तो हाथ पैर निकल गया टूट गया, तो क्या करोगे, विचलित हो जाओगे। ये अविचलित, हाँ विचलित नहीं होने का स्थिति में प्राप्त करना है आपको, क्या करना होगा, जो चेंजलेस है उसको जानना होगा। Unless you don't know the changeless, you will be bewildered by the changes. जब तक के अविनाशी परिवर्तनशील आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर के परिवर्तन के साथ विचलित होना ही पड़ेगा। You will be completely disturbed. जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा, Unless you don't know the knowledge of the soul, हमेशा आत्मचिंतन नहीं होगा, जो हमेशा परिवर्तन नहीं होता है, वैसे आत्मचिंतन के द्वारा ही ये जड़ वस्तु भौतिक परिवर्तन के साथ हम उसको झेल सकते हैं, उससे धीरस्तत्र न मुह्यति, डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तब अंत में अब देखिए 50 मैनेजमेंट स्टूडेंट थे, उसी समय वो लोगों ने पूछा कि ये तो क्या भगवद्गीता में है, तो प्रोफेसर लोगों ने पूछा हाँ है, तो आपका ये चेंज मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर है। तो वो लोगों ने 50-60 बच्चे थे, उनमें से 18 लोगों ने भगवद्गीता खरीदा उस समय। मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं भगवद्गीता को जान लूं कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, क्या मैं डिस्टर्ब नहीं रहूंगा। बोलो हाँ डिस्टर्ब नहीं रहोगे, बराबर है ले लो। दे टुक दिस भगवद। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक की तात्पर्य में यही लिखते हैं कि ये शरीर का परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन होने से वासाम जीर्णानि थाव्याः विहाय नवामि गृह्णाति नवो प्राणि तथा शरीरं विहाय जीर्णान्याय नवाम समाति। इसके द्वारा इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति हो जाता है। विद्वान का अर्थ यही है जो शरीर और आत्मा के बीच में भेद को जानता है, और आत्मा को जानता है, वो आत्मा जो है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसका परिवर्तन जो है वो इसका शरीर का होता है, इसी को विद्वान कहा जाता है। विद्वान बनने से वो कभी न मुह्यति, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा, तो मैंने जो भी मन में आया कह दिया। तो कोई कुछ टीका या टिप्पणी, कोई प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। Any questions? तो शरीर का परिवर्तन, अगर पुरुष को इधर बैठे उनको स्त्री का तुरंत शरीर मिल जाए कोई शाप की वजह से तो परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, परिवर्तन हो गया। अगर कोई स्त्री को पुरुष का शरीर मिल जाए तो परिवर्तन होना चाहिए, वो भी नहीं। जैसे वृद्धावस्था आता है तो उनको बाल को कलर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, इट डजंट हैव टू गो। जो वृद्धावस्था आता है हाँ शांतनु, हाँ बूढ़े से जवान बूढ़े से जवान, तो है ना, उनका भागवतम में इनसे लिया था ना, ये याति, हाँ शांतनु किसी को, हाँ अच्छा शांतनु जिसको छुएंगे वो बूढ़े से जवान हो जाते। शंतनु, शंतनु जिसको छुएंगे वो बूढ़े से जवान हो जाते हैं। तो कलयुग में अगर होते तो बहुत एक एडवर्टाइजमेंट था बचपन में देखा करते, 60 साल का जवान 16 साल का बुढ़ा, ऐसा कुछ था, आप ये खाओ तो हो जाओगे। बॉम्बे में सकाते हैं, साउथ बॉम्बे में जाके देखो, सुबह के टाइम में देखना चाहिए, 60-70 साल का बुढ़ा रहेगा, वो चड्डी पहनेगा, सब पहनेगा, ऐसे चलता रहेगा, मैं जवान हूं करके वो दिखाने के लिए, अभी मेरा जवानी गया नहीं है। तो दिस कॉल्ड फूलिशनेस। ठीक है, हरे कृष्ण। कंत्राय श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।